4 जनवरी दिन बृहस्पतिवार, दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। भारत में बीएसएफ का दावा, पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ का प्रयास विफल किया, जवाब में पाकिस्तान ने भी जारी किया बयान।
उन्होंने आरोप लगाया है कि जो भारतीय सेना है उन्होंने वहां पर बेकसूर शहरियों पर फायरिंग शुरू की और जिससे 3 व्यक्ति जो है वो घायल हुए हैं वहां पर।
जमात उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद का दावा, हालिया कार्रवाई भारत अमेरिका के दबाव में हुई।
हम बात करते हैं कश्मीर की, हमारे खिलाफ जो कुछ भी है वो इंडिया की तरफ से है, अलबत्ता ये हो सकता है कि इंडिया अमेरिका को उकसाए।
भारत की संसद में आज भी गूंजा 3 तलाक का मुद्दा।
उसके बच्चों को कौन
हमारे टोलों में
क्या खाएंगे उसके।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। सीमा सुरक्षा बल ने कहा है कि भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के अरीना सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के शक के बिना पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को मार दिया है। सुरक्षा बलों का कहना है कि कोहरे की आड़ लेकर एक व्यक्ति भागने में सफल रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के द्वारा जारी किए गए पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के नए वीडियो को प्रोपेगेंडा बताते हुए खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने फर्जी बयान जारी किया है। कथित वीडियो में कुलभूषण जाधव कह रहे हैं कि कैद में उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है और जब उनकी माँ और पत्नी उनसे मुलाकात करने आए थे तो उन्होंने देखा कि भारतीय राजनयिक उन पर चिल्ला रहे थे। पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाने वाले कुलभूषण बीते साल 25 दिसंबर को इस्लामाबाद में अपने घर वालों से मिले थे। इसके बाद भारत ने आरोप लगाया था कि कुलभूषण की मां और पत्नी के साथ पाकिस्तान में अपमानजनक व्यवहार किया गया और दोनों ने कुलभूषण के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की थी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने उन पर लगे आरोपों का खंडन किया है कि साल 2016 में हुए अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया था कि हो सकता है कि ब्रिटानी एजेंट उनकी जासूसी की हो। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया है कि वो मध्य पूर्व मामलों के सलाहकार के तौर पर ट्रंप से जुड़ना चाहते थे। टोनी ब्लेयर ने बीबीसी को बताया कि ट्रंप प्रशासन से संबंधित एक किताब में इस तरह के दावे किए गए हैं जो पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं।
This story is a complete fabrication. I mean, literally from beginning to end. I've never had such conversation.
ये पूरी तरह से गलत कहानी है। मेरा मतलब है कि ये शुरुआत से आखिर तक झूठ ही झूठ है। मैंने इस तरह की किसी बातचीत में कभी हिस्सा नहीं लिया, ना व्हाइट हाउस में, ना व्हाइट हाउस के बाहर, ना जेरेड कुशनर के साथ, ना किसी और के साथ। ये मेरे लिए अपने भीतर झांक कर देखने का वक्त है कि आधुनिक राजनीति पागलपन की किस हद तक पहुंच गई है। इस कहानी को देखिए जो पूरी तरह से मनगढ़ंत है, और षड्यंत्रों की कहानियों वाली ये कहानी आधी दुनिया में फैल चुकी है, लेकिन शायद यही आज के वक्त की राजनीति है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे का कहना है कि उनके देश के सामने आज जो खतरा है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। पिछले साल उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की कई मिसाइलों का परीक्षण किया था। इनमें से कई मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरे थे जिस कारण से अधिकारियों को संभावित खतरे की चेतावनी जारी करनी पड़ी थी। एक संवाददाता सम्मेलन में शिंजो अबे ने कहा कि उत्तर कोरिया अन्य देशों को उकसाने का काम कर रहा है जिसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन खतरों को कम करके नहीं देखना चाहिए। बीते साल उत्तर कोरिया ने एक तरफा अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए अन्य देशों को उकसाने का काम जारी रखा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज हमारा देश जिस तरह के खतरे से जूझ रहा है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने पूर्वी अमेरिका के हिस्से में एक भयंकर सर्द तूफान की चेतावनी जारी की है। फ्लोरिडा ने राज्य में आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। यहां 30 साल बाद पहली बार भारी बर्फबारी हुई है। जॉर्जिया, वर्जीनिया और उत्तर कैरोलिना में भी प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी है और लोगों से घरों में रहने को कहा गया है। कनाडा और अमेरिका के बीच में मौजूद नायगरा फॉल्स जमकर बर्फ बन चुका है और बताया जा रहा है कि अब तक सर्दी के कारण लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर। आज आपके साथ मैं संदीप सोनी। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल पर फेसबुक पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत आज भारत प्रशासित कश्मीर से, जहां सीमा सुरक्षा बल BSF का दावा है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में घुसपैठ की कोशिश हुई है जिसे नाकाम कर दिया गया है। दावा BSF ने यह भी किया है कि उसने पाकिस्तान की तरफ वो ठिकाने जहां पर मोर्टार लगाए कर रखे गए थे भारत की तरफ दागने के लिए, उन ठिकानों को भी, दो एक ठिकानों को भी नष्ट कर दिया है। इस खबर पर और जानकारी के साथ श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
सीमा सुरक्षा बल या BSF ने दावा किया है कि उनके मुस्तैद जवानों ने गुरुवार तड़के सीमा के अरीना सेक्टर में घुसपैठी को उस समय गोली का निशाना बनाया जब BSF के जवानों को इस बात का शक हुआ कि 2 से 3 शकावर लोग भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। BSF का कहना है कि उनके जवानों ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक घुसपैठी को मार दिया, जबकि 2 घुसपैठी घनी धुंध की आड़ में वापस भाग गए। इस हवाले से BSF के IG जम्मू रेंज राम अवतार ने BBC को बताया कि मारा गया घुसपैठी पहले ही भारतीय हिस्से में दाखिल हो चुका था। IG BSF:
इसमें ये था कि मॉर्निंग में जो है लगभग 6:45 बजे जो है 2-3 लोगों का सस्पिशियस मोमेंट देखा गया था एंड उनको जो है उनके ऊपर नजर रखी, जो है ये जो इनका जो गाइड था, गाइड जो है आगे आया, आगे आने के बाद में जो है वहाँ पर एक बंद जैसी जो जगह बनती है वहाँ पर ही डिप्लॉय हिमसेल्फ, और उसके बाद में जो है जब उसको चैलेंज किया तो उससे कोई रिएक्शन, कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया तो देन ही वाज फायर्ड अपॉन एंड ही वाज शॉट।
गौरतलब है कि पाकिस्तानी सेना के स्नैपर फायर से कल यानी बुधवार को नियंत्रण रेखा के सांबा सेक्टर में BSF के एक हेड कॉन्स्टेबल को मार दिया गया था, जिसके बाद BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच भारी गोलाबारी शुरू हो गई है। बीते दिनों भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 4 सैनिक राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने इस बात का दावा किया था कि उनके 5 कमांडोज ने पुनुस सेक्टर में नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के 3 सैनिकों को मार दिया था। नियंत्रण रेखा पर दोनों ही देश भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
सीमा पार से होने वाली इस कथित घुसपैठ पर और उस पर भारत की कथित कार्रवाई पर पाकिस्तान की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए मैंने इस्लामाबाद में BBC उर्दू सेवा के वरिष्ठ सहयोगी हारून रशीद से बात की।
देखें, पाकिस्तान की जो सेना है उसने घुसपैठिए किसी कोशिश की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन एक बयान जरूर जारी किया है और उसमें कहा है कि जो जफरवाल सेक्टर है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि जो भारतीय सेना है उन्होंने वहां पर बेकसूर शहरियों पर फायरिंग शुरू की और जिससे 3 व्यक्ति जो हैं वो घायल हुए हैं वहां पर, और जवाब में फिर पाकिस्तानी सेना ने भी उस भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया है जिसमें पाकिस्तान सेना का दावा है कि एक भारतीय फौजी जो है वो हलाक हो गया है और 2 जख्मी हुए हैं, और उनका ये भी कहना है कि ये पोस्ट इस लड़ाई में तबाह कर दी गई थी। ये मुख्तसर सा बयान ही पाकिस्तानी सेना ने इस झड़प के बारे में अब तक यहाँ जारी किया है।
हारून साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह की जब भी कोई खबर आती है सीमा के इस पार उस पार से गोलीबारी की, यहाँ भारत में जो भारतीय मीडिया है वो उस खबर को बहुत तरजीह देता है और एकदम से वो खबर आ जाती है, सब में हर टेलीविजन चैनल पर दिखने लगती है, क्या ऐसा ही उधर पाकिस्तान में पाकिस्तान के मीडिया के साथ भी होता है?
पाकिस्तान में भी मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ का एक रेस तो है, और जो ही उनको सेना की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी मिलती है तो वो फौरन ब्रेकिंग न्यूज़ और टिकर्स चलाना शुरू कर देते हैं और मतलब वो स्लाइड्स और क्या कहते हैं गले फाड़ फाड़ के उस पे कहने लगते हैं, लेकिन वो काफ़ी मुख्तसर सा होता है, थोड़ी देर के लिए होता है और चंद मिनटों के बाद वो खबर बिल्कुल ही फिर जो कवरेज है उससे गायब हो जाती है। तो कोई ऑथेंटिक और उसको ढूंढने की या उसकी पुष्टि करने की या उसको आज़ाद ज़राए से तस्दीक कराने की कोई कोशिश तो ऐसी पाकिस्तानी मीडिया में नज़र नहीं आती। जो फौज बताती है या जो सरकार बताती है उसी को उसी तरह थोड़ी देर के लिए चला के फिर अगली स्टोरी पे यहाँ का मीडिया चला जाता है।
ये थे इस्लाम आबाद में बीबीसी उर्दू सेवा के वरिष्ठ सहयोगी हारून रशीद। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान में जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद से, वही हाफिज सईद जिसे भारत मुंबई हमलों की साजिश रचने का जिम्मेदार मानता है, वही हाफिज सईद जो कई बार अमेरिका की आंखों में खटक चुके हैं, और वही हाफिज सईद जिनकी हालिया गिरफ्तारी को पाकिस्तान की सरकार ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद का हिस्सा बताया है। पाकिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के जरिए कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने जमात-उद-दावा को एक कट्टरपंथी संगठन मान लिया है? इसके जवाब में हाफिज सईद दावा करते हैं कि उनकी पार्टी के खिलाफ हालिया कार्रवाई अमरीका और भारत के दबाव में की जा रही है। बीबीसी उर्दू के वरिष्ठ सहयोगी शफी नकई जामई की हाफिज सईद से बातचीत सुनिए।
मुझे कोई वजह नहीं बताई गई थी, मैं अदालत में गया, अदालत में उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया, बस रिक्वेस्ट करते रहे कि जी ये मसला है, दबाव है। जजों ने पूछा भी कोई इनका जुर्म बताओ, तो उन्होंने कहा जी जुर्म तो इनका कोई नहीं है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत रिहाई मिली है। लेकिन अफसोस ये है कि कुछ सियासी लोग ना खामखा पता नहीं किस एजेंडे पर अमल कर रहे हैं कि वो खामखा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे की एक पूरी मुहिम लॉन्च कर रहे हैं, बस उनकी तरफ से है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कानून, अदालत सब हमेशा हमारे हक में फैसला देते रहे और मौजूदा फैसला भी उनका हमारे हक में।
पाकिस्तान के वजीर दिफा कहते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब के आपकी गिरफ्तारी हुकूमत के रद्दुल फसाद ऑपरेशन का हिस्सा है, जबकि रद्दुल फसाद तो दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का नाम है, तो क्या आपको हुकूमत ने दहशतगर्द करार तो नहीं दे दिया
है? नहीं, ऐसा ना कोई नोटिस है ना कोई बुनियाद है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह किरदार को सारी दुनिया जानती है कि जब पेशावर में हुआ था बच्चों के ऊपर हमला, सबसे पहले पहुंचने वाली हमारी तंजीम थी, वहां से बच्चों को इन जख्मी हालत में उठाना और फिर इलाज मुआवजा, सबसे पहले तो हम पहुंचे हैं। और इसी तरीके से पूरे मुल्क में अल्लाह के फजलो करम से हमने यानी इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत बड़ा लिटरेचर छापा, जगह जगह हमने काम किया। हम अब मुझे नहीं मालूम कि वजीर दिफा सारे एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। मैं तो साफ कहता हूँ कि अमरीकी दबाव है और साथ इंडिया की तरफ से ये सारी बातें हो रही हैं, वो उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं।
हाफिज जई साहब, ऐसी भी खबरें आई कि आपको अमरीका किसी ड्रोन हमले में आपकी जान ले सकता है, क्या आपके अपने इल्म में ऐसी कोई बात है?
मैं ये समझता हूँ जी कि कोई ऐसी बात नहीं है, ना अमेरिका का हमारे साथ बराह रास्त कोई झगड़ा है, ना हमारा कोई मसला है। हम बात करते हैं कश्मीर की, हमारे खिलाफ जो कुछ भी है वो इंडिया की तरफ से है। अलबत्ता ये हो सकता है कि इंडिया अमेरिका को उकसाए, अमेरिका के साथ हमारा झगड़ा ही कोई नहीं है। अफसोस है कि जो इंडिया कहता है हम यानी उसका जवाब देने की बजाय इस किस्म की बातें शुरू कर देते हैं।
जमात-उद-दावा को हक्कानी नेटवर्क के साथ मिलाया जा रहा है और अमरीका दोनों के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, क्या आपकी जमात-उद-दावा के हक्कानी नेटवर्क के साथ रवाबित हैं?
ना कोई इसका सबूत है, ना रवाबित है, ना अफगानिस्तान के अंदर कोई हमारा मामला है। ये जरूर बात है कि हम ये जरूर कहते रहे कि जी अमेरिका को अफगानिस्तान से वापस जाना चाहिए। अलबत्ता मैं इसकी वजह ये समझता हूँ कि अमेरिका को मसला है हक्कानी नेटवर्क से और इंडिया को मसला है हमसे, तो इंडिया और अमेरिका जब आपस में मिलते हैं तो ये गडमड कर देते हैं जमात-उद-दावा को या हमारी तंजीमों को उनके साथ वाबस्ता करके। हकीकत में इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, हक्कानियों का अपना मामला है, वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, जो कश्मीर में जंग लड़ रहे हैं अपनी आजादी की, हम उनको भी सही समझते हैं।
अच्छा, एक आखिरी सवाल ये भी है मेरा हाफिज सईद साहब, अगर अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद कशीदा होते हैं तो पाकिस्तान को अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करने होंगे ताकि अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला किया जा सके, तो क्या आप चाहेंगे कि पाकिस्तान के भारत और ईरान तमाम हमसायों से ताल्लुकात बेहतर हों?
जनाब, इस दौर में जंगें मसले का हल नहीं होती, यही बात हम अमेरिका को कहते हैं, यही बात इंडिया को कहते हैं। मुज़ाकरात मुआमलात इस तरीके से तय करो, हर मुल्क का अपना मसला है,
हम बिल्कुल नहीं ये चाहते कि ये जंगी सूरत हाल पैदा हो, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगें, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन जो बुनियादी सबब कश्मीर का मसला है उसको हल होना चाहिए, बस ये हम कहते हैं। अफसोस है कि ये बात हमारी बर्दाश्त नहीं की जा रही। हम कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मामला बिल्कुल पुरअमन होने चाहिए और अमेरिका को यानी इस खित्ते के अंदर खामखा पाबंदियां लगाने का कोई हक नहीं है, ये हम कहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मसाइल हैं हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन मसाइल को हल होना चाहिए।
पाकिस्तान में जमात उद्दावा के प्रमुख हाफिज सईद से बात कर रहे थे बीबीसी उर्दू के वरिष्ठ सहयोगी शफी नकई जामई।
बीबीसी इंडिया बोल। तीन तलाक को अपराध घोषित करने से क्या मुस्लिम समाज में सुधार होगा या ये सिर्फ एक राजनीतिक पैंतरा है, यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 6 जनवरी शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। भारत में वक्त हुआ है 7:45 शाम के। रुख एक बार फिर भारत का। भारत की संसद में भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा पर आज बहस हुई है। इस बहस के बीच दलित नेता जिग्नेश मेवाणी और छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ भीमा कोरेगांव में हिंसा के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए मैंने पुणे में बीबीसी संवाददाता मयूरेश कुन्नूर से बात की।
जी, ये जो मामला एफआईआर दर्ज हुई है ये पुणे के विश्रामबाग पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे आज दर्ज हुई है। अक्षय बिक्कट नाम के एक फिरियादी है, उनकी कंप्लेंट पर आधारित पुलिस ने ये केस जो है वो रजिस्टर किया है। हालांकि हुआ ये था कि भीमा कोरेगांव की जो घटना है, 1 जनवरी को वहाँ पे हिंसाचार हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, इसमें एक युवक की जान भी गई थी। उससे पहले एक दिन महाराष्ट्र के पुणे में ही जो शनिवारवाड़ा है वहाँ पे एक एल्गार परिषद नाम की एक परिषद हुई थी, इसमें जिग्नेश मेवाणी आए हुए थे, इसमें उमर खालिद थे, इसमें रोहित बिमला की माँ थी, साथ ही साथ भारतीय बहुजन महासंघ के प्रकाश आम्बेडकर थे, संभाजी ब्रिगेड करके एक संगठन है महाराष्ट्र की वो उसमें थी। सो अलग अलग जो विचारधाराओं की संगठन है जिनमें से ज्यादातर दलित संगठनाएं थी वो वहाँ पे थी और वहाँ पे भाषण हुए थे सबके।
मयूरेश, ये कब की घटना है?
ये हुआ था 31 तारीख को शाम और 1 तारीख को यहाँ कोरेगा को जो प्रोग्राम था वो तय था। तो एल्गार एक परिषद जो थी जिसमें जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद ने भाषण किया था, कंप्लेंट ये है कि इन्होंने वहाँ पे जो भाषण किया था वो भड़काऊ था, ऐसा आक्षेप लिया गया है। और इस भड़काऊ भाषण की वजह से ही दूसरे दिन भीमा कोरेगांव में जो है वो लोग उत्तेजित हो गए और वहाँ पे हिंसाचार हुआ, ऐसा इस कंप्लेंट में लिखा गया है। और इस कंप्लेंट के आधार पर ही जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद के खिलाफ पुणे में एफआईआर दर्ज हुई है।
मयूरेश, जो एफआईआर दर्ज हुई है कौन सी धाराओं में हुई है, कुछ बता पाएंगे?
इंडियन पिनल कोड के 153A, 1505 और 117 के तहत जो है ये एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। और कहना ये है जो इन्होंने फिरियाद करी है, कंप्लेंट करी है कि वो भड़काऊ भाषण की वजह से ही दूसरे दिन जाकर भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई, ऐसा उनका आरोप है।
क्या दोनों की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, और ये जो धाराएं हैं वो जमानती हैं या गैर जमानती हैं?
जी नहीं, दोनों की गिरफ्तारी इसमें कुछ हुई नहीं है, ये आज हुआ है। हालांकि जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद आज मुंबई में एक प्रोग्राम के लिए जाने वाले थे, जो छात्र भारती नाम का एक संगठन है उसमें वो बोलने वाले थे, बाद में उसकी परमिशन जो है वो मुंबई पुलिस ने रद्द कर दी और वो वहां पे भी नहीं पहुंचे। इस मामले में अब तक उनकी कोई भी हिरासत में या फिर गिरफ्तारी नहीं हुई है।
ये थे पुणे में बीबीसी संवाददाता मयूरेश कुन्नूर। उधर मुंबई में आज एक कार्यक्रम होने वाला था जिसमें जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद समेत कई छात्र नेताओं को शामिल होना था, लेकिन पुलिस ने इस छात्र सम्मेलन को मंजूरी नहीं दी। इस खबर पर और जानकारी के लिए मैंने मुंबई में बीबीसी संवाददाता जाह्नवी मूले से बात की।
राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था छात्रवादी की ओर से, मुंबई के पश्चिमी उपनगर विले पार्ले में भाईदास ऑडिटोरियम है जो मीठीबाई कॉलेज के बिल्कुल नजदीक है, वहीं पर ये इस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला था जिसमें जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद के साथ साथ रीचा सिंह, वेदव्रता गोगई, प्रदीप नरवाल, कपिल पाटिल और दत्ता ढगे इन जैसे जो छात्र नेता है देश के अलग अलग हिस्सों से जो आते हैं तो वो स्टूडेंट्स के जो इश्यूज है उनके ऊपर बोलने वाले थे। लेकिन जो दो तीन दिनों से राज्य में माहौल है उसको नजर में रखते हुए एन मौके पर ये जो आयोजन था उसे परमिशन नहीं मिली, ऐसा दावा आयोजकों ने किया है। और वहां पर जब हम पहुंचे तो पूरी तरह से वो पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया था और पुलिस ने वहां से छात्रों को हटाना शुरू किया था। जब इस आयोजन को परमिशन नहीं मिली उसके बाद कुछ छात्र नेताओं को वहां से पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया, उन्हें डिटेन कर दिया गया है। उनमें से ही रीचा सिंह और प्रदीप नरवाल, इनका क्या कहना है आइए सुनते हैं।
हम यहां छात्र भारती और एनुअल समिट के लिए आए थे, पर जिस तरह पुलिस का रवैया बना हुआ, जिस तरह में उठाया गया बिना किसी बात के और बिना अपनी बात रखे हुए, वो बात दर्शाती है कि देश में लोकतंत्र केवल बातों में रह गया है। हम यहाँ केवल बात रखने के लिए आए और हमारा अधिकार है देश में कहीं बात रखे।
लेकिन जिस तरीके से सरकार और महाराष्ट्र की सरकार लास्ट मिनट पर कार्यक्रम को रद्द कर दिया और हम लोगों को जो कि अपनी बात रखने आए थे और पुलिस ने डिटेन करके पुलिस थानों में बैठाया हुआ है, ये इस बात को दर्शाता है कि आज पूरे देश में एक अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है और किसी को सरकार अपनी बात नहीं रखने देगी। और मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं तो पूछना चाहती हूँ देवेंद्र फडणवीस जी से कि आपको छात्रों और नौजवानों से क्या डर है।
जो प्रमुख आयोजन करता है उनमें से सचिन बनसोड़े, सागर भालेराव, इनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सचिन बनसोड़े मीडिया से बात करने लगे तभी पुलिस ने उनको वहां से पुलिस लेके गई। उन नेताओं से तो हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो छात्र कार्यकर्ता है जो छात्र भारती से जुड़े हुए हैं उनका कहना है, उनके पास लेटर भी है कि 3 महीने पहले से ही इसका आयोजन तय हुआ था और उनके पास जो कुछ भी नेसेसरी परमिशन चाहिए होते हैं वो सब है।
जानवी ये बताइए कि जो पुलिस ने किस आधार पर इस छात्र सम्मेलन को मंजूरी नहीं दी, इसे होने नहीं दिया?
पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास नहीं आया है। हमने उनसे बार बार उन्हें पूछा है, पुलिस अफसरों को, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ भी माहौल है उसको नजर में रखते हुए, क्योंकि जिग्नेश मेवानी और उमर खालिद के खिलाफ FIR भी पुणे में दर्ज हो चुके हैं, इसी सब सिचुएशन को नजर रखते हुए पुलिस ने इस आयोजन को परमिशन नकारी है, ऐसा कुछ छात्र नेताओं ने ही हमें कहा है।
ये थी मुंबई से BBC संवाददाता जानवी मूले। इस खबर में अपडेट ये है कि पुलिस ने जिन छात्र नेताओं को हिरासत में लिया था उन्हें रिहा कर दिया गया है। 3 तलाक बिल पर हंगामे के बाद आज राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बिल पर अब कल चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने की मांग की है। आज की कार्यवाही पर BBC संवाददाता जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
सरकार ने लोकसभा में 3 तलाक बिल पास करने के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया और बिल के पेश होते ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के सांसद इस बात पर अड़े हुए थे कि इसे पारित कराने से पहले सेलेक्ट कमेटी के सामने इसे रखा जाए, लेकिन वित्त मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस दोहरी पॉलिसी रखती है, इसने लोकसभा में बिल का विरोध नहीं किया तो राज्यसभा में क्यों कर रही है। इस पर हंगामा हुआ और आज की बैठक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के खिलाफ वही इल्जाम एक बार फिर से दोहराया।
लोकसभा में कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया और राज्यसभा में दूसरा स्टैंड लिया और तमाम अड़चन के साथ इस बिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का ये दोहरा चेहरा आज देश के सामने है कि जब इस मुल्क की खवातीन, बहनों, बेटियों की इज्जत की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट नीति नहीं अपनाती है।
लेकिन कांग्रेस के सदस्यों ने इस इल्जाम को खारिज करते हुए बिल को सिलेक्ट कमेटी को पेश करने की मांग दोहराई। हंगामे के दौरान कांग्रेस सदस्य गुलाम नबी आजाद ने जानना चाहा कि एक साथ 3 बार तलाक कहना अगर कानूनी तौर पर अपराध घोषित कर दिया गया तो जेल जाने वाले मुस्लिम पतियों के बच्चों की वित्तीय मदद कौन करेगा?
उसके बच्चों को कौन खाएंगे? उसके लिए कोई प्रावधान? ये सरकार प्रावधान, जब तक वो जेल में है तब तक सरकार का खर्चा देगी। हम अभी पास कर देते हैं।
ऑनरेबल एलओ
कोई प्रोविजन नहीं है,
नो ऑनरेबल एलओ
कोई प्रावधान नहीं है,
प्लीज डोंट गो टू द मैरिज और अदरवाइज द बिल।
विपक्ष के कुछ सदस्यों ने बिल में संशोधन भी करने की मांग की, जिस पर अरुण जेटली ने कहा कि पहले से इस पर नोटिस क्यों नहीं दिया गया था, इसलिए ये मांग वाजिब नहीं है। सरकार के लिए राज्यसभा में इस बिल को पास कराना आसान नहीं होगा, इसे पास कराने के लिए 34 वोट कम पड़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार बिल को सेलेक्ट कमेटी के हवाले करने का फैसला कर सकती है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
और अब श्रोताओं की बारी, आपकी चिट्ठियों की बारी।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज फिर मेरे साथ हैं वंदना।
वंदना, बहुत तहे दिल से और खुशी से।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आज का कार्यक्रम भी एक शेर से शुरू करूं।
बिल्कुल।
काफी है मेरे दिल की तसल्ली को यही बात, आप आ ना सके, आपका पैगाम तो आया। ये शकील बदायूनी का शेर है। और जितनी चिट्ठियां आप लेके आई हैं, उन सब चिट्ठियों को देखते हुए मेरे जहन में ये शेर आया। दोस्तों, जब आप बीबीसी के कार्यक्रम सुनने के बाद कलम उठाते हैं या हमें ईमेल लिखने के लिए अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप क्या सोच रहे होंगे। जब सुबह सुबह पूरी दुनिया भर की खबरें हम रेडियो के जरिए आप तक पहुँचाते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको संतोष होता होगा। पर जब कभी हम कुछ श्रोताओं की उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं, तो आपको कोफ्त भी होती होगी जो आपके खतों में झलकती है। और यकीन मानिए, हमारे लिए आपकी चिट्ठी की अहमियत है, चाहे उसमें तारीफ लिखी हो या आलोचना। जैसे वंदना जी, ये पहली चिट्ठी मैं पढ़ लेता हूँ। मोतिहारी, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार से मंटू कुमार ने लिखा है, बीते सोमवार को आपकी राय कार्यक्रम में राजेश जोशी के खास पेशकश की तारीफ के बजाय शिकायती पत्र ज्यादा पढ़े गए, और यही बात ये लिखते हैं कि बीबीसी को बाकियों से अलग बनाती है। तो मंटो जी का धन्यवाद, और खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि इनका जन्मदिन है, ये पूरे 25 बरस के हो गए हैं। इन्होंने लिखा है, 4 जनवरी है और मेरी आज वर्षगांठ है, तो हम इनको बधाई दें।
बिल्कुल।
तो बहुत बहुत शुक्रिया मंटू जी। और इसी के साथ ही मैं अब क्षमा आपकी तरफ देता हूँ, बहुत समय ले लिया, खत शुरू कीजिए।
शुरू करें तो ये जो खत है वो है शेख मुस्लिम साहब का, ग्राम पचीरा, प्रखंड रानीगंज, जिला अररिया, बिहार से इन्होंने लिखा है। नव वर्ष की शुभकामनाएं तो दी ही हैं, और लिखते हैं कि जो फणीश्वर नाथ रेणु नाम से ज्यादातर लोग वाकिफ होंगे, तो उन्होंने कहा कि वो जिस गांव में अब रेणु ग्राम के नाम से जाना जाता है, मेरे घर से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस महान कथाकार के जीवन पर अगर कुछ नए साल में करें, रोचक हो, जो ज्ञानवर्धक हो, तो बहुत ही अच्छा होगा।
ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा सुझाव है। हम कोशिश करेंगे कि फणीश्वरनाथ रेणु, या तो उनके बारे में कुछ बता सकें, या उनकी उनके जो कृतित्व रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकें।
और अगली जो चिट्ठी है ये आई है गोंडा से, उत्तर प्रदेश, राजबली यादव।
राजबली यादव जी लिखते हैं। अच्छा, क्या लिखते हैं?
एक तो इन्होंने लिखा है कि अब रेडियो से कार्यक्रम अच्छा सुनाई पड़ता है, ये बहुत ही सुनकर तसल्ली हुई।
हाँ, ये बहुत ही तसल्ली की बात है। ये कहाँ से लिख रहे हैं?
उत्तर प्रदेश से। और साथ ही इन्होंने वर्षांत कार्यक्रमों की तारीफ की है, और खासकर इन्होंने कहा कि संदीप सोनी ने जो प्रधानमंत्रियों की कुर्सी तक जो पहुंचते रह गए, वो जो खास पेशकश थी वो इन्हें जाहिर तौर पर काफी पसंद आई।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक और चिट्ठी ले लेती हूँ, इससे पहले कि ईमेल की ओर बढ़े। अभय कुमार निराला, बक्सर बिहार से ये लिखते हैं
जी।
और इनका ये कहना है कि शाम के कार्यक्रम के प्रसारण को 1 या 1.5 घंटे का कर दे, ताकि बीबीसी साप्ताहिक पत्रिका और अच्छे ढंग से आप पेश कर सके।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। ख्वाहिश तो हमारी भी ये है, लेकिन फिलहाल हम इसका वादा नहीं कर सकते हैं कि कार्यक्रम का समय बढ़ाया जा सकेगा।
आज बहुत शायराना हो रहे हैं।
नए साल में कुछ शायराना तबीयत आप ठीक कह रही हैं, हो रही है।
ठीक है, अब ईमेल ले लेते हैं। मनीष कुमार भारद्वाज लिख रहे हैं कि बीबीसी हिंदी में कुछ नए उद्घोषकों का उच्चारण ठीक नहीं है, उनको ठीक करें या फिर इतनी जल्दी स्टूडियो में उन्हें ना भेजें।
ये बात आपकी सही है, ये आलोचना शिरोधार्य। कुछ साथी हैं जिन्होंने रेडियो कभी किया नहीं है और वो प्रसारण के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, अखबारों में काम करके आए हैं, तो उनको थोड़ा वक्त दीजिए, चीजें सुधरेंगी।
विकास कुमार, इन्होंने ईमेल भेजा है, कहा है कि मोहनलाल की जो प्रस्तुति थी परमाणु युद्ध पर वो अच्छी लगी, संदीप सोनी की अच्छी लगी, और साथ ही इन्होंने आपका जिक्र भी किया है।
जितनी मेहनत से कार्यक्रम किए वो बहुत हमारे श्रोताओं को पसंद आए हैं, लेकिन आलोचना भी हुई है। और मैं खास तौर पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, इलाहाबाद से हमारे जो श्रोता हैं अनिल शुक्ल, मैं देख रहा था उनकी ईमेल है, उन्होंने कुछ आलोचना की है, अगर आपके पास है तो।
जी बिल्कुल, वो लिख रहे हैं कि राजेश जोशी के वर्षांत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाना और इंटरनेशनल फकीर का गाना चलाए जाने पर एक तरह से उन्होंने एतराज किया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रस्तोता की घृणा उजागर हुई।
अनिल शुक्ल जी, आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और आपको हम पर भरोसा होना चाहिए। वर्षांत कार्यक्रमों में अगर आपने गौर से सुना हो, एक कार्यक्रम हम कोशिश करते हैं जिसमें हास्य व्यंग्य का पुट हो, और हास्य से दुनिया के किसी भी कोने में जो फैसला करने वाले लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो हास्य और व्यंग्य से बचते नहीं हैं, नहीं उनको बचना चाहिए। उसके पीछे जो आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल किया है, घृणा जैसा, वो कुछ नहीं है, वो तो एक सिलसिला था हंसी का, मजाक का। हमारी जिंदगी से अगर हंसी मजाक और खिलकारियां और खिलखिलाहट गायब हो जाएगी तो हम कितना अपने आप को गंभीरता से लेंगे और क्यों लेना चाहिए। बहरहाल आप लिखते रहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई, ये शेर नहीं है दोहा है, तो लिखते रहिएगा
जी।
चलते चलते अब हम भी आपसे विदा लेंगे, दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। अगला प्रसारण समय जानते हैं आप भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि।